श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमोभ्यः सर्वोपलवरहितः प्रज्ञान घनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मीति। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमरान्धस्य ज्ञानाजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। आदगुरये नमः जुगादगुरये नमः सतगुरये नमः श्रीगुरुदेवये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री स्वामी निर्मल जी महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री गुरु नानक देव जी महाराज की जय। कण कण में व्याप्त सर्व अंतर्जामी प्रभु पिता परमात्मा के चरणार बिंदों का ध्यान करते हुए सर्वकाल वंदे ब्रह्मलीन वेदांत केसरी श्री स्वामी निर्मल जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत श्री विभूषित परम वीतराग परम श्रद्धेय निर्मल पीठाधीश्वर श्री 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 महंत जी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। श्रद्धेय स्वामी निर्मल चेतन जी महाराज तथा उपस्थित सभी संत वृंद भक्त वृंद सबका अभिनंदन करते हैं। प्रभु की कृपा हो रही है, ईश्वर की कृपा हो रही है, महापुरुषों के पावन तपस्थली पर बैठ करके हमको आध्यात्मिक चिंतन ज्ञान चर्चा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हर रोज हम चर्चा करते हैं, इस भावसागर से जो दुख का घर है क्लेशों का घर है, इस भवसागर से पार होने का सरल सा उपाय, सरल शब्दों में जिसको समझा जा सके, जो शास्त्र की गहराई है, वेदांत की गहराई है, जो तत्व का चिंतन है, उसको सरल शब्दों के माध्यम से चर्चा करते हैं, श्रवण करते हैं। कबीर जी महाराज जी की पावन वाणी से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कबीर जी महाराज हर रोज उसी बात को दृढ़ करवाते हैं, तत्व का चिंतन कैसे हो, संसार के विषयों की आसक्ति कैसे छूटे, आध्यात्मिक में हमारा कैसे प्रवेश हो, जिससे हम अपने लक्ष्य तक, मंजिल तक पहुंच सकें। तो कबीर जी अपने जीवन पर घटा करके बताते हैं, हम लोगों को समझाते हैं, लेकिन अपना ही दृष्टांत देते हैं कि मैंने कैसे पाया है प्रभु को, मैं कैसे अभेद हुआ हूँ, मेरा देह अध्यास कैसे छूटा है। क्योंकि अध्यास ही सबसे बड़ी रुकावट है ब्रह्म प्राप्ति में, अध्यास यानी भ्रांति ही मेन कारण है। यदि अध्यास का पता चल जाए, अध्यास की निवृत्ति हो जाए, तो प्रभु प्राप्ति में कोई विलंब नहीं है। यानी प्रभु प्राप्ति प्राप्ति की प्राप्ति है, पहले ही प्राप्त है, केवल भ्रांति के कारण लगता है कि बंधन है, बंधन वास्तव में नहीं है। तो भ्रांति की निवृत्ति हो जाए तो प्रभु की प्राप्ति हम मान लेते हैं, लेकिन ये प्राप्त की प्राप्ति है। तो कबीर जी महाराज के पास बहुत लोग जब काशी में आने लगे, कबीर जी का प्रताप महिमा तप तेज देख करके बहुत लोग ज़्यादा आने लगे जब, तो कबीर जी को अपने चिंतन में विघ्न लगता था। इतने लोग आकर के अपनी अपनी व्यथा बताते हैं तो कबीर जी को लगता कि अब चिंतन में विघ्न होता है। तो ऐसा विचार करके कबीर जी एकांत में रहने लगे, अपनी मस्ती में बैठे रहते हैं कबीर जी। तो जब इस प्रकार अलग हो करके बैठने लगे तो घर वालों को फिक्र हो गया कि कबीर जी को कुछ हो गया, कोई बीमारी लग गई है, बोलते नहीं है, सोते नहीं है, खाते नहीं है ज़्यादा, बहुत कम। तो कबीर जी महाराज जी को देख करके तो माता पिता को बहुत चिंता हुई कि पता नहीं क्या बात हो गई है, ऐसी हालत ऐसी दशा क्यों हो गई। तो उन्होंने क्या किया, जब ऐसा होता है तो फिर वैद्य को बुलाया जाता है। तो एक वैद्य को बुलाया माता पिता ने कि इसको देखो क्या हुआ है, कोई इनके शरीर में कोई रोग है लगता तभी ऐसा हुआ। तो कबीर जी महाराज जी की नब्ज पकड़ी उसने आकर के, नाड़ी पकड़ी वैद्य ने। तो देखता है कबीर जी का कि इसमें कौन सा रोग है, लेकिन रोग कहीं होता तभी तो उसको दिखता, रोग था ही नहीं कोई। जो रोग था उसकी उनके पास दवाई नहीं थी, औषधि नहीं थी। रोग कौन सा था उनको प्रभु को मिलने का, तो उसके लिए तो कहते हैं कि जिस तन लाग गए सोई जाने, दूसरे को क्या पता है कि इसके अंदर कौन सी पीड़ा है। जिसको होती है वो जानता है, दूसरे को नहीं मालूम होता। तो उस वैद्य ने कबीर जी की नाड़ी पकड़ के बहुत यत्न किया कि शायद पता चल जाए। उसको पता नहीं चला कि कबीर जी को कौन सा रोग है। तो उसको निमित्त बना के कबीर जी महाराज कहते हैं वैद्य को कि वैद्य बोलता है कत नहीं ठौर मूल कत लावो। माता पिता को कहने लगा वैद्य, कि इनके शरीर में मेरे को ऐसी जगह कोई नहीं दिखती जहाँ कोई बीमारी हो, कत नहीं ठौर, कोई भी ऐसी ठौर यानी जगह नहीं है, स्थान नहीं है जहाँ कोई बीमारी हो। तो मूल कत लावो, मूल कहता जो बूटी है दवाई है मैं कहाँ लगाऊँ, कहाँ इंजेक्शन लगाऊँ इनको, कहाँ दवाई लगाऊँ, कोई बीमारी ही नहीं है तो फिर कैसे दवाई लगाऊँ। तो बीमारी तो थी लेकिन वैद्य को नहीं मालूम था। वैद्य क्या है, शरीर की बीमारी देख सकता है। इससे सिद्ध होता है ना कि जो बीमारियां हैं शरीर के अंदर होती हैं उन्हीं का ही इलाज होता है। हम लोग संपूर्ण रोगों की निवृत्ति चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि मेरे कहीं मेरे को कोई रोग ना हो, कष्ट ना हो, दुख ना हो, लेकिन उसका इलाज सही नहीं करवाते। चाहते तो संपूर्ण सुख चाहते हैं लेकिन उस सुख को कहाँ ढूंढते हैं, शरीर से। जब शरीर में कोई व्याधि आती है तो उसको दूर करने के लिए वैद्य के पास जाते हैं। तो शरीर का जो कष्ट होता है ना, वो वैद्य की दवाई से जब ठीक होता है तो हमको लगता है कि हम सुखी हो गए। सुखी तो हम पहले ही थे लेकिन उस शरीर के साथ आसक्ति होने से क्या होता है कि जब कोई शरीर में व्याधि आती है तो उसको हम अपने अंदर मानते हैं, शरीर के रोग को अपने में मानते हैं, शारीरिक कष्ट को अपने में मानते हैं, मानसिक कष्ट को अपने में मानते हैं। तो इसलिए उस धर्म को अपना मानते हैं। यानी फोड़ा फिंसी आदि बुखार होता है, ज्वर होता है तो किस में होता है, स्थूल शरीर में, लेकिन हम कहते हैं कि मैं बीमार हूँ। हम अपने को बीमार मानते हैं, शरीर को बीमार नहीं मानते, मैं बीमार हूँ। तो शरीर का धर्म हमने अपने में माना है, धर्म इसलिए माना है कि हमने अपने आप को शरीर माना है। तो जब शरीर माना है तो शरीर में रहने वाले धर्म भी हम अपने मानते हैं। तो वैद्य क्या जानता है, वैद्य को तो इतना ही मालूम है, वो भी अपने आप को शरीर ही मानता है। उसने चिकित्सा किसकी सीखी है, शरीर की, शरीर की बीमारियों का उसने इलाज सीखा है कि शरीर को कैसे ठीक करना है, मन को नहीं वो कर सकता। सूक्ष्म शरीर के बारे में उसको कोई मालूम नहीं है, उसको स्थूल शरीर के बारे में मालूम है। तो सूक्ष्म शरीर जब तक है तो सूक्ष्म शरीर में जो बीमारी है उसका इलाज कहीं नहीं है, उसका एक ही इलाज है सर्व रोग का औखद नाम। जितने रोग हैं वो मन के द्वारा होते हैं ना, अहम से होते हैं। जब तक अहम है तब तक सभी रोग पकड़ते हैं। तो अहम का इलाज नहीं है किसी वैद्य के पास, मन के रोग कहीं से नहीं हट सकते। इसलिए कहते हैं कि कबीर जी के शरीर को देख करके वैद्य ने कहा कि इनके शरीर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां बीमारी हो, तो मैं दवाई कहां लगाऊं। खोजत तन में ठौर न पावों, कहते मैंने पूरे शरीर को देखा है, अच्छी तरह नाड़ी देखने से पता चल जाता ना शरीर का, तो कहीं वात पित्त कफ कोई नहीं है इनके शरीर में, ठौर न पाऊँ, मेरे को कोई भी ऐसी जगह नहीं दिखती इनके शरीर में जहाँ बीमारी हो, जहाँ दुख हो। तो कबीर जी महाराज कहने लगे वैद्य को कि मैंने तो आपसे पहले ही बहुत देखा है शरीर को, आप कहते हैं कि इनके शरीर में दुख कहीं नहीं है, और मैंने कहते देखा ही कि मेरे शरीर में सुख की कोई जगह नहीं है। कबीर जी महाराज कहते, वैद्य कहता है कि दुख के लिए कोई स्थान यानी बीमारी नहीं है, तो कबीर जी कहते मेरे शरीर में सुख की कोई जगह नहीं है, मैंने देखा है। तो उल्टा है ना, वैद्य को लगता है कि दुख नहीं है कोई, कबीर जी कहते हैं सुख नहीं है कोई, मैंने भी अच्छी तरह देखा है, कत नहीं ठौर, कोई जगह नहीं है। खोजत तन में, मैंने शरीर को अच्छी तरह खोजा है, देखा है, ठौर न पाऊँ, कहीं भी सुख की जगह नहीं है, यानी शरीर में कहीं भी सुख नहीं है। तो हम शरीर के कष्ट को ठीक कराना चाहते हैं, किस लिए कि सुख मिले। तो कबीर जी महाराज कहते हैं सुख है ही नहीं, मैंने देखा शरीर में, तो सुख कहाँ है फिर? सुख कौन सा है जो हम ढूंढते हैं, जो हमारे को अनुभूति होती है सुख की, वो कहाँ है? शरीर में नहीं है। शरीर में होता तो फिर हमारे को, शरीर तो हमारे पास पड़ा है रात्रि को स्वप्न में, शरीर में सुख है ना, तो शरीर तो है स्वप्न में, लेकिन स्वप्न में कितना दुखी होते हैं, कितना बड़ा कष्ट होता है स्वप्न में, वो कहाँ से आ गया? शरीर तो हमारे पास है तब भी दुखी हैं। यदि शरीर में सुख होता तो स्वप्न में भी अवश्य मिलता। जैसे भूख की बात है, जो भूख है वो किसका धर्म है? प्राण का। तो हम रात्रि को भोजन करके अच्छी तरह रज करके सोए हैं, तो अभी सोते सारे ही स्वप्न आ गया तो लगता कि हम पत्नी कितने दिन के भूखे हैं, तो वो रोटी कहाँ गई? भूख का दुख है कि नहीं स्वप्न में? और स्वप्न में कहीं से भंडारा खाया अच्छी तरह, उठ करके कह रहे हैं कि मेरे को भूख बहुत है, तो वो भंडारे वाला भोजन कहाँ गया? स्वप्न में खाया है ना पूरा, अच्छी तरह तृप्त हुए हैं, उठते ही कहते हैं मेरे को भूख लगी है। जागृत की भूख मिटाई थी लेकिन स्वप्न में फिर भूखे, और स्वप्न में अच्छी तरह भोजन खाया, जागृत में फिर भूखे, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसलिए कहते हैं ना सपने जो संसार, ये संसार कैसा है? स्वप्न जैसा है, क्योंकि स्वप्न के पदार्थ कभी तृप्त नहीं करते किसी को, इसी प्रकार जागृत के भी नहीं करते। यदि जागृत के करते तो स्वप्न में भूख न लगती। जागृत में हम धनी हैं, हमारे पास बहुत धन है, लेकिन स्वप्न में क्या हुआ? भीख मांग रहे हैं। नरपति एक सिंहासन सोया, सपने भया भिखारी, स्वप्न में भिखारी हो गया, जागृत में तो सिंहासन पर ही बैठा है, राज्य सिंहासन पर बैठा, जागता हुआ सिंहासन पर बैठे हुए झोंक लग गई, नींद आ गई। नरपति एक सिंहासन सोया है ऐसा लिखा साथ में कि सिंहासन पर बैठा हुआ सोया है, सिंहासन कौन सा? राज्य का सिंहासन। लेकिन सपने भया भिखारी, स्वप्न में भिखारी हो गया, भीख मांग रहा है। अक्षत राज, उसका राज्य तो है अक्षत है, कहीं नहीं गया, बिछड़ तो दुख पाया, उस राज्य से वियोग हो गया तो दुख पाया। सो गति भई हमारी, रविदास जी महाराज कहते वो हमारी गति हो गई, जैसे राजा की हुई, हमारे पास तो है सुख, तो है हमारे पास, लेकिन सुख से वियोग हुआ तो हम दुख पा रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो सुख है वो शरीर में या संसार के पदार्थों में नहीं है। कबीर जी महाराज कहते हैं मैंने तन को खोज के देखा है, तन यानी एक खंड, और खंड के साथ में जैसा खंड वैसा ब्रह्मांड, जैसा पिंड है वैसा ब्रह्मांड है, जब इसमें सुख नहीं है तो ब्रह्मांड में भी कहीं नहीं है। कहते मेरे को तो कहीं मिला नहीं है, तो वैद्य भी कहता और कबीर जी के माता पिता भी कहते झूठ बोलता है, कहते हैं ये झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कबीर जी महाराज कहते हैं कि लागे लागी होए सो जाने पीर, आप लोगों को क्या मालूम है? जब कबीर जी को देख लिया तो माता पिता कहते हैं कि जब कोई बीमारी नहीं तो झूठ बोलता है, जानबूझ के करता है। वैद्य भी कहता कोई बीमारी नहीं है। इसी प्रकार एक बार गुरु नानक देव जी महाराज जी को भी हुआ था, छोटी उम्र में वो भी ऐसे प्रेमा भक्ति में इतने मगन हो गए कि संसार से उपराम हो गए, सब काम छोड़ के बाहर सारा दिन जा कर के वृक्ष के नीचे पड़े रहते हैं, ना खाते हैं ना पीते हैं कुछ नहीं, सब बालक मंडली को भी छोड़ दिया पूरा दिन वहीं। तो उनको भी घर वालों को लगा कि इनको कोई भूत प्रेत ने पकड़ लिया है या कोई बीमारी हो गई है, तो उन्होंने भी वैद्य को बुलाया था, हरिदास उसका नाम था, तो वो भी बहुत पहुंचा हुआ था, ऐसी बात नहीं, बहुत समझदार था, लेकिन उसके समझ में नहीं आई बात। तो वहाँ पर उसको जब नहीं समझ आई तो गुरु नानक देव महाराज जी ने भी एक श्लोक उच्चारण किया। वो कहते हैं, वैद बुलाया वैदगी पकड़ ढंडोले बाँह। वैद को बुलाया है वैदगी करने के लिए, बीमारी का इलाज करने के लिए, और उसने क्या बाजू पकड़ी है, पकड़ ढोले बाँह। कहते हैं, वैद जी आप आए हैं इलाज करने के लिए, आप मेरी बाजू पकड़ के देख रहे हैं, लेकिन भोला वैद न जाना ही, ए भोले वैद तेरे को नहीं मालूम। कर्क करेजे माह, जो दर्द है जो पीड़ है वो कहाँ है, कलेजे में, हृदय में, तुम तो मेरी बाजू पकड़ के देख रहे हो। भोला वैद न जाना ही, ए वैद जी आपको नहीं मालूम, आप तो भोले हैं, अनजान हैं। कर्क करेजे माह, जो कर्क है जो दर्द है जो पीड़ है वो कहाँ, मेरे कलेजे में यानी हृदय में है। इसी प्रकार गुरु अंगद देव जी महाराज जी के साथ भी हुआ, तो उन्होंने भी एक श्लोक उच्चारण किया। कहते हैं, वैदा वैद सुवैद, वैदा वैद सुवैद, तू पहला रोग पछाण। वो कहते हैं, वैद्य जी आप अच्छे वैद्य तभी माने जाएंगे, पहला रोग पछाण, पहले देखते सार ही आप रोग पहचान जाओ, क्या रोग है, मेरे बताने की जरूरत ना पड़े आपको, हम ही उसी को अच्छा वैद्य मानते हैं ना, जो नाड़ी देख करके अपने आप बता देता है आपको क्या है। तो कहते हे वैद्य जी आप तभी श्रेष्ठ वैद्य हैं, पहला रोग पहचान, पहले रोग को पहचानो। तो उनका तात्पर्य ये था कि पहले अपना रोग पहचानो कौन सा है, तभी आप श्रेष्ठ वैद्य हैं, आपको अपने अंदर का रोग मालूम हो कि आपके अंदर कौन सा रोग है। कहते हैं, मेरा रोग जो है वो तभी जानी आप पहचान पाओगे यदि आप खुद उसके रोगी होंगे, जो मेरे को रोग है यदि आपको होगा तो तभी आपको मालूम होगा। गुरु नानक जी कहते हैं, जो मेरे को रोग है उसको पहला आप पहचानो, यानी आप उस रोग को जानते होंगे तब जब भी आपको हुआ होगा। तो इसलिए कहते हैं, वैदा वैद स्वैद, तू पहला रोग पहचान रोग द। फिर कहते हैं कि ऐसा दारू लोड़ न हो जित वन्य रोगा घाण। ऐसा दारू बताइए, ऐसी औषधि बताइए जिससे सभी रोगों की निवृत्ति हो जाए। एक और कहते हैं कि जो दूसरों की परीक्षा करता है ना उसको नहीं माना जाता। वो कहते हैं, नानक परखे आपको ता पारख जान। कहते हैं, दूसरे की परीक्षा करने से नहीं परीक्षक माना जाता, जो अपनी परीक्षा करना जानता है उसको कहते हैं परीक्षक। दूसरे की परीक्षा करने वाले को परीक्षक नहीं मानते, जो अपनी परीक्षा करनी जानता, अपनी परख जानता है करनी। रोग दारू दोवे बुझे ता वैद सुजान। कहते हैं, जो रोग और दारू दोनों को जानता हो वही श्रेष्ठ वैद्य है। तो जिसको रोग के बारे में मालूम नहीं है वो दवाई कैसे बताएगा, जिसको पहले रोग मालूम होगा वो बताएगा। यानी शरीर के रोग की बात नहीं करते यहाँ, अंतर का जो रोग है, कौन सा रोग है, कौन सा दुख है, तो उसके बारे में भी बताते हैं। कि एक तो गुरु नानक महाराज जी कहते हैं, क्लेश तो संसार में दुख तो बहुत होते हैं, एक ऐसा रोग है जो भूख का सबको लगता है, सबको भूख लगती तो दुख होता है कि नहीं, वो भी कहते दुख है, लेकिन वो इतना बड़ा दुख नहीं है, वो तो संसार में उसकी निवृत्ति हो सकती है रोटी खाने से, लेकिन एक ऐसा रोग है उसकी निवृत्ति नहीं होती। एक बिछोड़ा, एक दुख भूख, एक तो कहते भूख का दुख है लेकिन एक बिछोड़े का दुख है, वियोग का, वो नहीं होता है निवृत्त। हाँ, संसार का कोई संबंध ही है, उसका वियोग है वो तो हो सकता है, लेकिन जो प्रभु से वियोग होता है ना, उसका जो रोग है, बेमुख होए राम ते लगन जन्म वियोग, जो जन्म जन्म का वियोग है, यानी एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के बाद भी उस वियोग की निवृत्ति नहीं होती, वो जो है वो कैसे होता है, बेमुख होए राम ते, जब हम राम से विमुख होते हैं तब वह योग होता है। ओम योग कैसा है? संसार में आपका कोई पुत्र पत्र बंधु बिछड़ा है तो साल दो साल तीन साल दस साल में मिल जाएगा, लेकिन वो कहता है लग्न जन्म वियोग। जब एक बार विमुख हो जाते हैं तो जन्म जन्मांतर का वियोग हो जाता है, कभी मिलना नहीं होता। तो कहते जे सबसे बड़ा रोग है, अब कबीर जी महाराज कहते हैं वो है मेरे को आपको नहीं मालूम, लागी होए सो जाने पीर, पीड़ा जिसको हो वो जानता है, जिसके अंदर पीड़ा होती है वो जानता है। या कहते हैं कि जिसको स्वयं लगी हो, जो स्वयं उस रोग का रोगी हो वो दूसरे की पीड़ा को भी जानता है। जिसके पास ऐसी बीमारी नहीं है वो दूसरे की बीमारी का महत्व नहीं समझता, वो कहता है ऐसे ही कर रहा है, झूठ मूठ कर रहा है। जो है जिसके पास वो जानता है, या फिर प्रभु जानता है, स्वामी जानता है। तो इसलिए कहते हैं कि लागी होए सो जाने पीर, राम भक्त अनियाले तीर। कहते हैं कौन सी बीमारी है? फिर वैद्य ने पूछा आप ही बताइए, आपको लगी है ठीक है, हम तो नहीं जान पाए, हमारे तो समझ में नहीं आता। कहते हैं कौन सी बीमारी है आप ही बता दीजिए। तो राम भक्त जी महाराज कहते हैं राम भक्ति अनियाले तीर, जैसे राम जी के बाण है ना, राम जी के अमोघ बाण है, वो जिसके अंदर घुस जाते हैं उसको फिर वापस नहीं आने देते। कुंडलिया जैसे होता है ना, आगे से मुड़े होते हैं ऐसे होते हैं, जैसे बिच्छू की पूंछ होती है ना ऐसे होती है, जब अंदर जाते हैं तो बाहर नहीं आते। वो कहते हैं मेरे को भी बाण लगे हैं, मेरे अंदर बाण से मेरा अंदर जो है बिद गया है, जख्म हो गए हैं मेरे अंदर, पीड़ा है मेरे को। कौन से बाण है? राम भक्ति, राम भक्ति के बाण लगे हैं मेरे अंदर। पीड़ा मेरे को कौन सी है? राम भक्ति के बाण है मेरे अंदर लगे, यानी मैं राम को मिलना चाहता हूँ, मेरे अंदर वियोग है। अब मेरे को प्रेमा भक्ति की दर्द है, प्रेमा भक्ति के द्वारा राम को मिलना चाहता हूँ। जाके सोकत जाने पीर पराई, जाके अंतर दर्द न पाई। जिसके अंदर दर्द नहीं है सोकत जाने पीर पराई, वो दूसरे की पीड़ा को कैसे जान सकता है। या फिर कहते हैं कि किसी ने पूछा कि जो ऐसे होते हैं ना वियोगी होते हैं, जो प्रभु के आशिक होते हैं, उनके कोई लक्षण होते हैं क्या? यदि पहचानना हो कि ये प्रभु का परमात्मा का प्रेमी है आशिक है, तो इसकी निशानी कौन सी है? तो बताया किसी महात्मा ने कि हाँ निशानी तो है। कहते कौन सी? कहते नौ निशानी होती है आशिकों की, नौ निशानी होती है जो प्रभु के आशिक होते हैं, प्रेमी होते हैं। कौन कौन सी है? तो कहते आशकारा नव निशानी ऐ पिसर, आशिकाओं की नौ निशानी होती है। कहते हैं कौन कौन सी? आह सरदो रंग जरजो चश्म तर, कम खुर्दनो कम गुफ्तनो ख्वाबश हराम, इंतजारी बेकरारी दस्त सर। ये कहते नौ निशानी होती है आशिकों की, जो प्रभु के प्रेमी होते हैं। कौन सी? आह सरदो, जो प्रभु के वियोग में होते हैं ना, जिनको बिछोड़ा होता है, वो जब अकेले बैठते हैं ना तो प्रभु के वियोग में इतना तड़फते हैं कि आह सरदो, कहते लंबे लंबे श्वास लेते हैं, निशानी है उनकी। जो बहुत दुखी होता तो लंबे लंबे श्वास लेता है ना, तो प्रभु को मिलने की पीड़ा होती है जब, तो आह सरदो, कहते अकेले बैठ के लंबे लंबे सांस लेते हैं। फिर रंग जरदो, जैसे कोई बिछड़ा हुआ होता है ना, जो जिसको पति का मिलाप नहीं होता, बिछड़ा होता है, तो उसका क्या होता है? रंग पीला हो जाता है वियोग में। तो कहते जो प्रभु के आशिक होते हैं ना, एक तो लंबे लंबे सांस लेते हैं, दूसरा रंग जरदो, उनका रंग पीला हो जाता है। चश्म तर, प्रभु के वियोग में इतना व्याकुल होते हैं कि चश्म तर, कहते उनके चश्म यानी उनके जो नेत्र हैं उनसे वियोग के आंसू बहते रहते हैं, ये उनकी तीसरी निशानी होती है। और फिर कम खुरदनो, उनको भूख नहीं लगती, भूख उड़ जाती है उनकी। बहुत कम खाते हैं, पहली बात तो छोड़ ही देते हैं, उनको उनकी जो भूख है उड़ जाती है। कम खुरदनो, बहुत कम खाते हैं। कम गुफ्तनो, बोलना नहीं चाहते किसी से, बहुत कम बोलते हैं। और क्या होता है, ख्वाबश हराम, ख्वाबश यानी नींद, नींद उनकी हराम हो जाती है, उनको नींद नहीं आती, केवल प्रभु की याद ही बचती है। छह हो गई, फिर कहते हैं इंतजारी, इंतजार करते रहते हैं, श्वास श्वास में इंतजार रहता है उनको प्रभु का, कि कब मेरा प्रियतम मिल जाए मेरे को। और बेकरारी, बहुत व्याकुल रहते हैं 24 घंटे। और क्या होता है, दस्तसर, कभी कभी आप देखेंगे जो ऐसे प्रेमी होते हैं ना, योगी होते हैं, बहुत जब चिंता होती है ना कि प्रभु पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जब बहुत व्याकुल होते हैं तो दस्तसर, दस्तसर सर, दस्तसर का अर्थ है कि ऐसे कई बार ऐसे सिर पकड़ के बैठ जाते हैं, होता है ना जब बहुत दुखी होता आदमी तो ऐसे करके बैठ जाता है। तो कहते हैं जो आशिक होते हैं ना प्रभु को मिलने की, जब उनको बहुत ज़्यादा व्याकुलता होती है ना प्रभु दर्शन की, तो दस्तसर, ऐसे कहते सिर पकड़ के बैठ जाते हैं, चिंतन करते हैं। ये नौ निशानी होती है प्रभु के प्रेमियों की। तो इसलिए कबीर जी महाराज कहते हैं, लागी हुए सो जाने पीर, राम भक्त अनियाले तीर। वो जो लगे हैं ना बाण राम भक्ति के, जिसको लगे हैं वो जानता है। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि एक और भी प्रमाण दिया कि हर प्रेम बाणी मन मारिया, अणियाले अरिया राम राजे, जिस लागी पीर परम की सो जाने जरिया। जिसको प्रेम की पीड़ा लगी है ना वो जानता है। तो इसलिए जब किसी को वियोग होता है ना, तो वियोग वाला ही जानता है उसकी क्या हालत होती है, दूसरे को नहीं मालूम होता कि इसके अंदर कौन सा दर्द है। तो इसलिए कबीर गुरु नानक साहब भी कहते थे कि कर्क करेजे माहे, भोला वैद न जाने, आपको नहीं मालूम, आप तो भोले भाले हैं, आपको क्या पता है, आप तो नाड़ी दे करके शरीर की पीड़ा बता सकते हैं, लेकिन वो पीड़ा ऐसी है कि आपको नहीं मालूम, जिसको होती है वह जानता है। तो उसके बाद फिर कहते कबीर जी को उनके घर वाले कि और भी तो काशी में बहुत भक्त हैं, तुम ही कोई ज़्यादा भक्त हो, हम भी तो कह देते ना कई बार कि तुम बड़े भक्त आ गए, और कोई भक्ति करने वाला नहीं है यहाँ। कहते पूरा घर का कार बिहार छोड़ करके बैठ गए हो क्या, और भक्त काशी में नहीं है। कबीर जी कहते हैं भक्त, हम कब कहते हैं नहीं है। तो कहते ऐसे खाली बैठे रहने से काम चलेगा। तो कबीर जी महाराज कहते हैं कि काशी में भक्त तो बहुत हैं, लेकिन हम एक दृष्टांत देते हैं कहते आपको, किसी राजा की बहुत स्त्रियां हैं, 2 हैं 4 हैं 10 हैं। कहते हैं वैद्य जी महाराज, किसी राजा की या किसी की 2 3 4 स्त्रियां हैं, तो आप क्या कहेंगे जब उनको देखेंगे कहीं जा रही हैं 4 स्त्रियां, तो कहेंगे ये फलाने आदमी की स्त्रियां हैं, इतना ही तो बोलोगे। एक भाए देखो सब नारी, कहते जितनी स्त्रियां हैं एक ही आदमी की स्त्रियां हैं, तो आप क्या कहेंगे ये फलाने आदमी की स्त्रियां हैं, इतना ही बोलोगे उनको देख करके, और तो कुछ नहीं जानते। कहते इतना तो आप जानते हैं कि ये स्त्रियाँ हैं फलाने फलाने राजा की ये स्त्रियाँ हैं, लेकिन ये तो नहीं जानते क्या जानो सह कौन प्यारी, ये नहीं आपको मालूम कि इसमें से सबसे अधिक प्रेम किसका है राजा के साथ। सिर्फ आप इतना कह सकते हैं कि ये राजा की रानियां हैं, क्या जानो आप, ये क्या जानते सह कौन प्यारी, सह यानी पति को कौन से ज़्यादा कौन सी प्रिय है, ये नहीं आप जानते। इसी प्रकार कहते हैं काशी में भक्त तो बहुत हैं, संसार में भक्त तो बहुत हैं, क्या जानो सह कौन प्यारी, ये कौन जानता है कि स्वामी को मालिक को प्रभु को ये भक्त रूप जो स्त्रियां हैं सबसे प्यारी कौन सी है, नहीं ना मालूम। आप कहेंगे ये भी भक्त है ये भी भक्त है ये भी भक्त है, लेकिन भक्त भक्त में अंतर तो है, वो तो मालिक जानता है पति जानता है कि उसका किस स्त्री से ज़्यादा अधिक प्रेम है, इसी प्रकार प्रभु जानता है कि उसको कौन सा भक्त अति प्रिय है। क्या जानो सह कौन प्यारी, कहते मैं भी हूँ भक्त, काशी में और भी भक्त बहुत हैं, लेकिन आप लोग ये तो नहीं जानते कि पति को कौन सा भक्त सबसे प्रिय है, ये नहीं आपको मालूम। कहते हैं फिर कैसे पता चले कि कौन सबसे अधिक प्रिय है, इतने भक्त हैं। कहते पता चल जाता है, कहो कबीर जाके मस्तक भाग, सब पर हरता को मिले सुहाग। कहते हैं जिसके मस्तक के अच्छे भाग्य हैं, जिसके मस्तक में पुण्य कर्म के बल से भक्ति का लेख है, पति मिलाप का लेख है जिसके मस्तक में, सब पर हर सब स्त्रियों को छोड़ करके पति उसी को मिलता है, दूसरे के पास नहीं जाता। एक दृष्टांत दिया महात्मा, कहते हैं कि एक राजा था, उसके घर में तीन पत्नियां थीं, तो कहीं गया था बाहर व्यापार करने के लिए, कहीं गया था या कहीं मुहिम पे गया था युद्ध करने के लिए, उस वहाँ जीत प्राप्त की उसने, तो उसने वहाँ से पत्र लिखा एक अपने घर में कि मैं अब यहाँ से आ रहा हूँ, तो आप लोगों को जो कुछ चाहिए, जो कोई भी किसी को वस्तु चाहिए, आप मेरे को चिट्ठी ले करके भेजो। तो सभी जितनी रानियाँ थी उन्होंने अपने अपने इच्छा के अनुसार लिख के भेजा कि मेरे को कपड़ा चाहिए, मेरे को सोना चाहिए, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, सब ने लिखा अपनी अपनी इच्छा अनुसार लिखा। तो उस राजा की एक सबसे छोटी रानी थी, तो उसने क्या किया, उसने एक लाल कागज दिया, लाल कागज उसके ऊपर लिख दिया सा, और कुछ नहीं लिखा, सा अक्षर लिखा और भेज दिया। तो राजा ने सभी रानियों की चिट्ठियां देखी और जो जो सामान जिसने लिखा था उसको भेज दिया, लेकिन वो जो सा अक्षर वाली चिट्ठी है जब वो पढ़ी तो उसके समझ में नहीं आया अभी ये क्या है, केवल सा लिखा था लाल कागज के ऊपर। तो उसने कहा ये क्या है, ये नहीं समझ में आया। मंत्री को पूछा उसने भी, ये क्या है, ये नहीं मेरे समझ में आता। तो मंत्री ने कहा, राजन ये जो आपकी सबसे छोटी रानी है ना, उसकी चिट्ठी है, तो उसने जो सा लिखा है ना लाल कागज पे, इसका अर्थ है लालसा, लालसा। तो उसका तात्पर्य है कि मेरे को पतिदेव और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को आपके दर्शनों की लालसा है, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कोई वस्तु नहीं चाहिए, आपके दर्शन की लालसा है मेरे अंदर, जब आप आ जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि कहो कबीर जाके मस्तक भाग, जिसके मस्तक के भाग होते हैं ना प्रभु को मिलने के लिए, सब पर हर सब को छोड़ करके जो परमात्मा रूप पति है ना, ताको मिले सुहाग, वो जो सुहाग यानी पति को मिलने का जो सुख है उसी को मिलता है। इसलिए कहते हैं आप लोग नहीं जानते कि इतने भक्त हैं काशी में, लेकिन प्रभु को कौन सा प्रिय है, प्रभु के इनको सबको छोड़ के किसको मिलना चाहता है। तो इससे कबीर जी महाराज जी ने सिद्ध किया इस पूरे शब्द का तात्पर्य क्या है, कि जो भक्त होते हैं जिनको प्रभु को मिलने की लालसा होती है, जो प्रभु के वियोग में मस्त रहते हैं, भूख उनको नहीं लगती, नींद नहीं आती, व्याकुल रहते हैं, उनके आँखों में से नेत्र जो हैं वो हमेशा उनके सजल रहते हैं, आंसू बहते रहते हैं, लेकिन संसार के लोग नहीं जानते। संसार के लोग तो उनको देख करके हंसी करते हैं कि ये पखंड कर रहा है, उनको क्या मालूम, क्योंकि जाके अंतर दर्द न पाई सोकत जाने पीर पराई, उसको क्या मालूम। तो जिसको लगी होती है वो जानता है। अब उसके बाद कबीर जी महाराज इस प्रकार का उपदेश जब कबीर जी महाराज ने दिया, तो एक कबीर जी का भक्त था, कबीर जी का शिष्य था, वो कबीर जी के पास बैठ करके कबीर जी का उपदेश लेकर के प्रेमा भक्ति बहुत करता था, प्रभु ईश्वर की आराधना करता था। तो लेकिन क्या हुआ कि वो कभी कोई वहाँ के जो कर्मकांडी लोग थे ना, उनकी संगत उसको मिल गई, संगति उनके पास बैठने लगा। उन्होंने कहा छोड़ो क्या प्रेमा भक्ति, क्या भक्ति, भक्ति के चक्कर में पड़े हो, कर्म कांड में लगा दिया उनको पकड़ के, ये करो आ फल मिलेगा, ये करो ये फल मिलेगा। तो उसने छोड़ दिया, वो कर्म में लग गया कि इससे स्वर्ग में जाएंगे, इसमें ये मिलेगा, उसमें वो मिलेगा। तो बहुत देर के बाद कहीं एक दिन कबीर जी जा रहे थे तो रास्ते में मिला वो भक्त, तो उसने कबीर जी को बुलाया ही नहीं। कबीर जी ने उसको रोक के पूछा कि क्या बात है भाई, पहले तो आप बैठते थे हमारे पास, प्रेमा भक्ति करते थे, चलो मान लिया हो तो आपने छोड़ दिया, लेकिन कभी बुला तो लिया करो, राम राम तो किया करो। तो उसने कहा कि महाराज जी बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आपके पास बैठ के हमने प्रेमा भक्ति बहुत की, लेकिन हमारे को क्या मिला, कुछ नहीं मिला, इसलिए हमने छोड़ दिया। अब हमने ये कर्म किया तो ये मिला, ये कर्म किया तो ये मिला। तो उसकी बात सुन करके कबीर जी महाराज कहते हैं, जब उसने कहा कि अब तो हमारा काम बढ़िया चल रहा है, जब आपके पास रहते तो भूखे मर रहे थे। तो कबीर जी महाराज उसको देख करके शब्दोच्चारण किया, गौड़ी कबीर जी जाक हर सा ठाकुर भाई, मुक्त अनंत पुकारण जाई, अब कहो राम भरोसा तोरा, तब काहू का कवन निहोरा रहाओ, तीन लोक जाके है पहार, सो काहे ना करे प्रतपार, कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, क्या बस जौ बिख दे महतारी। उसको कहते हैं कबीर जी महाराज उस भक्त को कि जाके हर सा ठाकुर भाई, वो कहते हैं किसी आदमी को आश्रय रहता है ना संसार का कि इस आदमी से मेरा काम पूरा हो जाएगा, तो फिर वो दूसरे की तरफ ख्याल ही नहीं करता, उसको ये होता है कि मेरा तो काम इसी से चल जाएगा, इसलिए वो दूसरे को देखता भी नहीं है। तो उसी प्रकार कहते हैं कि आप थोड़े से कार्य पूरा करने के लिए आपने प्रेमा भक्ति छोड़ दी कि ये उपासना करेंगे तो हमारे को ये फल मिल जाएगा, इसलिए क्या ज़रूरत है ईश्वर को मानने की, प्रेमा भक्ति करने की। तो जाके हर सा ठाकुर भाई कहते ये बताइए, जब एक छोटी सी उपासना करने से आपका काम चल रहा है, तो जिसके सिर के ऊपर सबसे बड़ा ठाकुर है, जो हरि है, जो सबको रक्षा करता है, सबकी पालना करता है, सबकी लेता करता है, ऐसा जो हरि है, जो मालिक है, जो जिसके हृदय में साक्षात्कार हुआ है, ऐसा जो भक्त है ना प्रभु का, उसकी छोटी मोटी संसार के पदार्थों की बात छोड़ो, वो तो कहते हैं मुक्ति अनंत पुकारण जाई, जो मुक्ति मानी जाती है ना, सलोक है, सामीप्य है, साजुज्य है, स्वरूप मुक्ति है, ये जो मुक्तियाँ मानी है ना, ये भी कहते उसके आगे जा कर के नाक रगड़ती हैं। जिसके हृदय में ठाकुर है, जिसके ऊपर मालक है, हरि है, उसके तो इर्द गिर्द मुक्तियाँ भी घूमती फिरती हैं। संसार के पदार्थों की तो बात ही छोड़ो, आप थोड़े से पदार्थों के चक्कर में आपने प्रेमा भक्ति छोड़ दी, लेकिन जो प्रेमा भक्ति में जुड़ जाते हैं भक्त, जिनने हरि का साक्षात्कार किया है, संसार के पदार्थ तो उनके आगे पीछे घूमते ही हैं, लेकिन मुक्ति भी उनके आगे पीछे घूमती है। मुक्तियाँ कहती हैं कि मेरे को शरीर श्लोक मुक्ति है, सामीप्य मुक्ति है, सजुज्य मुक्ति है, ये भी उसके आगे गिड़गिड़ाती हैं। एक ऐसा वचन लिखा भी है कि मुक्त बपड़ी भी ज्ञानी त्यागे, जो ज्ञानी है, जो भक्त है, जो तत्व वेता है, वो तो मुक्ति को भी त्याग देता है। कौन सी मुक्ति, सलोक मुक्ति है, सामीप्य मुक्ति है, इत्यादि मुक्ति कहता नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि वो कैवल्य मोक्ष का अधिकारी है, उसको कैवल्य मोक्ष मिल चुका है, इसलिए इस मुक्ति को नहीं चाहता। तो कहते हैं कि आप कहो राम भरोसा तोरा, उस शिष्य को देख करके उसको समझा रहे थे, तो बीच में कहते हैं कि मेरे को किस बात का, किसी का क्या मेरे को एहसान है, मेरे को किसी की लज्जा नहीं है, मेरे को किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं है जैसे तुम गिड़गिड़ाते हो। अब कहो, अब वो कहो राम भरोसा, कहते हे प्रभु, हे मालिक, जब संसार के लोग छोटे छोटे आश्रय लेकर के भूल जाते हैं तो मेरे ऊपर तो आपका बल है, आप हैं मेरे राम हैं, तो मेरे को तो आपका विश्वास है, भरोसा है। जब आप जैसे मालिक स्वामी का भरोसा है, विश्वास है, कौन से हैं आप, कैसे हैं? कहते हैं कि दीनन की प्रतपाल करे नित संत उमार गनी मन गारे, पच पचू नग नाग नराधव सर्व समय सबको प्रतपाल है, पोखत है जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म विचार है, दीन दयाल दया निध दोखन देखत है पर देत न हारे। ऐसे हैं आप जो दीनों की प्रतपालना करने वाले हैं, दुष्टों का नाश करने वाले हैं, आप जल में थल में पल में सब जगह प्रतपालना करते हैं, ऐसे ठाकुर हैं दीन दयाल दया निध, आप तो दया का खजाना हैं, संसार के लोगों के दोखन देखत हैं, आप संसार के लोगों के विकारों को दोषों को देखते हो पर देत न हारे, फिर भी आप देने से नहीं हारते, थकते नहीं हो, देते ही जाते हो। तो जब ऐसे ठाकुर का मेरे को भरोसा है तब काहू का कमन ने हो रहा, तब मेरे को किसकी क्या लाज है लज्जा है, किसी का मेरे को एहसान नहीं चाहिए। तो रहाओ कह करके फिर आगे कहते हैं कि तीन लोक जाके है भार। तो कहते हैं उसने कहा कि जब सारा जितना कार व्यवहार है ये छोड़ करके केवल भजन ही करने लग जाएंगे तो भूखे मरेंगे और क्या होगा, ये तो भक्ति करनी, तो उसने कहा भूखे मरना है, फिर सब संसार के कार्य छोड़ दो और सारा दिन भक्ति में लगो तो भूखे मरेंगे और क्या होगा। तो कबीर जी महाराज कहते हैं कि तीन लोग जाके है भार, जो तीन लोग हैं, स्वर्ग लोग है, पाताल लोग है, मृत्यु लोग है, ये जिसके वश में है जाके है भार, यानी जिसके बल के नीचे हैं, जिसके आश्रित हैं तीनों लोग, जिसके हुक्म में चलते हैं ये तीनों लोग, जो यानी जो तीनों लोगों की प्रतिपालना करने वाला है, सो काहे न करे प्रतपार, जो तीन लोगों की प्रतपालना करता है, सबको रक्षा करता है, सबका भरता है, करता है, हरता है, जो ऐसा स्वामी है जिसके अधीन है तीनों लोग, सो काहे न करे प्रतपार, वो आपकी प्रतपालना क्यों नहीं करेगा, आप क्यों फिक्र करते हो। जब वो तीन लोगों की प्रतपालना कर सकता है, दीनन की प्रतपाल कर रहा है, तो आपकी नहीं करेगा, यानी जो उसकी प्रेमा भक्ति करता है उसकी रक्षा में तो कोई संदेह ही नहीं है। जब वो तीन लोगों का भार है उसके ऊपर, सबको अपने में अधीन करके सबका पालन कर रहा है, रक्षा कर रहा है, लहता कर रहा है, यदि कहते यकीन नहीं है तो आप एक दृष्टांत देते हैं, हम लोगों को यकीन नहीं होता कि उसकी कृपा से ही हमारे को जो मिल रहा है, हमारी रक्षा हो रही है, हमारे को यकीन नहीं होता। तो कहते एक दृष्टांत देते हैं आपको कि कुम्मी जाल माहे तन तिस बाहर पंख खीर तिन नाही। एक दृष्टांत देते हैं धन्ना जी महाराज, कुम्मी होती ना कुम्मी, कच्छपी जो होती है वो जल के अंदर रहती, कछू भी रहता ना जाल में, और जो कछपी होती है कहते जल में रहती है वो, लेकिन वो जो अंडा देती है ना जल में नहीं देती, जब अंडा देती है तो बाहर आकर के ब्रेती पर देती है, नदी से बाहर जो ब्रेती पड़ी होती ना रेता बालू, वहाँ पर आकर के अंडा देती है, आप जल में रहती है, तो वहाँ जो बाहर अंडा है ना उसका दृष्टांत देते हैं भाई, कुम्मी जल महे तन तिस बाहर, उस अंडे से बच्चा निकलता है, अपने आप निकलता है, और बच्चा अंडे से निकला है बाहर है, अभी अभी निकला है मानो बच्चा, उसको पंख नहीं है, उसको चलने की पावर नहीं उसमें। तो कहते हैं कि कुम्मी जो है वो जल में है, उसका जो तनु यानी बच्चा है वो बाहर है, पंख उसको पंख नहीं है, चल नहीं सकता, खीर यानी उसके उसको दूध पिलाने वाला कोई नहीं है, बाहर है ना उसके पंख हैं, अपने आप खा नहीं सकता, दूध पिलाने वाला भी कोई नहीं है, तो पूर्ण परमानंद मनोहर उसको भी कहते हैं वहाँ बाहर पूर्ण कर रहा है कि नहीं, वो बच्चा पल रहा है कि नहीं। तो कहते हैं ऐसा जो परिपूर्ण है, जो परमानंद स्वरूप है, समझ देख मन माही, उसको तुम देख के समझ जाओ कि जब उसकी पालना कर रहा है तो आपकी नहीं करता, आपको नहीं देगा। सैल पत्थर में जंतु उपाए, ताका रिजक आगे कर धरया। पत्थर के बीच के अंदर, बिल्कुल पत्थर के बीच में एक कीड़ा होता है, कई पत्थरों के बीच में होता है कीड़ा, उस पत्थर को जब फोड़ते हैं तब बीच में से निकलता है वो। इसलिए कहते सैल पत्थर में जंतु उपाए, उसके अंदर कहीं कई जो लोगों ने देखा भी है, जब उसको फोड़ करके देखा, उस कीड़े को देखा, तो कीड़े के पास में उसके खाने के लिए वस्तु भी पड़ी है बीच में। ताका रिजक आगे कर धरया, उसका रिजक कहते हैं उसके आगे पहले रखा हुआ है। तो तुम किस बात की चिंता काहे रे मन चित्त वह उद्दम, जा आहर हर जियो परया। हरि को जब आहर की चिंता है तो इसलिए कहते हैं कि चिंता तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम क्यों चिंता करते हो। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, चिंता तो उसी को है। कौन जल में जंतु उपायन तिना भेरोजी दे, तो जो जल के अंदर हैं उनको भी दे रहा, पोखत है जल में, थल में, पल में, कल के नहीं कर्म विचार है। इसलिए कहते हैं कि तीन लोक जाके है भार, सो काहे ना करे प्रतपार, उसकी तेरी भी प्रतपारना अवश्य करेगा। इसलिए कहते हैं कि कुम्मी जल मह तन तिस बाहर, पंख खीर तिन नाही, पूर्ण परमानंद मनोहर, समझ देख मन माही। इसलिए अपने अंदर समझ, चिंता कर कि जब उसको दे सकता है। एक और कहते पाखण कीट गुप्त होए रहता, जो पाषाण का पत्थर का कीट है ना, अंदर उसके गुप्त है, ताचो मार्ग नाही। कहते हैं अंदर उसको देख लो, पत्थर कितना कठिन होता, उसके अंदर मार्ग नहीं है हवा जाने का भी, ताचो मार्ग नाही। रोजी जाने के लिए, श्वास जाने के लिए भी वहाँ मार्ग नहीं है। कहे धन्ना पूर्णता हूँ, धन्ना भक्त जी महाराज कहते हैं उसको भी पूर्ण कर रहा है। मत रे जी डराही, तू मता, कोई तेरे को डरने की जरूरत नहीं है। जहाँ मार्ग भी नहीं है वहाँ पर भी रिजक दे रहा है, तो तेरे को किस बात की चिंता है। इसलिए कबीर जी महाराज कहते हैं, कहो कबीर एक बुद्ध विचारी, कहते मैंने मेरे अंदर एक ऐसी विचार हुई है, ऐसा मैंने चिंतन किया है कि क्या बस जौ बिख दे महतारी, कि किसी को कौन बचा सकता है। जब कहते हैं माता ही बच्चे को विष दे करके मारना चाहती हो तो कोई नहीं बचा सकता, क्या बस, तो क्या बस है किसी के, जब माता ही किसी बच्चे को विष दे करके मारना चाहती हो। तो यदि माता बचाना चाहती हो तो फिर किसी के क्या बस है कि वो बच्चे को मार सके, क्या बस। इसलिए कहते हैं वैद को, कहते हैं कि हे वैद, आपके बस में नहीं है कुछ बात। या कहते उस भक्त को कि जो सारे संसार को जिसने अपने बस में कर रखा है ना, माता की तरह जब वो किसी को बचाना चाहता है तो क्या बस, क्या किसी के बस में है कि वो दूसरे का अधिकार छीन के खा जाए, कभी नहीं खा सकता, क्या बस, उसके कोई बस नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि कबीर जी महाराज के जो भक्ति में लग जाते हैं, जिनको प्रभु का विश्वास होता है ना, भरोसा होता है, वो फिर संसार के आश्रय छोड़ देते हैं। लेकिन जब तक संसार के आश्रयों की लालसा रहती है ना कि ये मेरा भला करेगा, ये मेरी मदद करेगा, तब तक प्रभु नहीं आते, प्रभु पर विश्वास नहीं बनता। ये तो कई इतिहास हमने देखे हैं, द्रौपदी का इतिहास हमारे सामने है कि नहीं। जब तक उसको विश्वास था कि मेरे पांच पति बैठे हैं, भीष्म पितामह बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, जो धृतराष्ट्र हैं वो बैठे, बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, تو میرے کو یہ کچھ نہیں کر سکتی. ان کے آشرے پر رہی نا وہ, سب کا اس نے آشرا تکا اور سب کو کہا کہ میری پت بچائیے. سنسار کا آسرا تھا نا کہ میرے کو کیا ضرورت ہے, تو کوئی بھی نہیں نکلا, کوئی بھی نہیں تھا وہاں, تھا لیکن کسی کی ہمت نہیں پڑی. لیکن جب تک ان کے اوپر وشواس تھا تب تک بھگوان کو نہیں مانگا, نہیں پکارا. جب بالکل نہیں رہا نا کوئی کہ اب کوئی بچانے والا نہیں ہے, تو کہتے ہیں اس سمے پھر بھگوان کو پکارا, ہاں ہاں کرشن کرے بل لاندی. پھر ہاں کرشن ہاں کرشن جب کیا, یعنی سنسار کے آسرے چھوڑ دیے کہ اب کوئی بچانے والا نہیں ہے, اب کہو رام بھروسہ تورا. کہتے میرے کو آپ کا جب وشواس ہے سو کاہے نہ کرے پرتپار. بس دروپتی کے کہنے ماتر تھا, تو اسی سمے بھگوان وستر اوتار ہو کر کے آ گئے. تو کبیر جی مہاراج کہتے ہیں کہ جس کو پربھو کا وشواس ہے اس کو سنسار کے چھوٹے چھوٹے پدارتھوں کے لیے کسی کے آگے گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہری اوم تپست پورنمدہ پورنمدم پورنات پورنمدچیتے پورنسیا پورنمادایا پورنمیوشیشیتے. ओम शांति शांति शांति. बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय. श्री स्वामी निर्मल जी महाराज की जय. सतगुरुदेव महाराज की जय. श्री गुरु नानक देव जी महाराज की जय.